أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. اور ان غیر مسلم نے کہا، کافروں نے کہا کہ یہ تو قرآن ایک جھوٹ ہے جس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بنا لیا ہے، جھوٹ گھن لیا، اور دوسری قوم نے ان کی مدد کی ہے قرآن بنانے میں. یہ اللہ کا کلام نہیں. قد جاؤ، تحقیق کہ یہ لوگ ظلم اور دھوکہ کی بات لے کر آئے. کہنے لگے اگلوں کی کہانیاں ہیں، یہ اگلوں کی سٹوریز جو انہوں نے بنا رکھی ہے. وہی تم لا، پھر لوگوں کے سامنے صبح شام پڑھتے رہتے قرآن کے بارے میں. یہ عجیب بات ہے کہ قرآن کریم پر سورہ فرقان کی پارہ نمبر 18 کی چوتھی آیت میں اور پانچویں آیت میں اللہ پر تہمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت ہے، اور قرآن کریم پر تہمت ہے. دے اکیوزنگ تھری تھنگز، اپون اللہ اور رسول اللہ اور قرآن کریم، تین چیزوں پر. پہلی بات، اگر پورا قرآن 30 پارے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا بنایا ہوا ہے، از اے میڈ اپ قرآن، is not from Allah, جھوٹا، تو اللہ نے ان کو جواب دے دیا قرآن کریم میں کہ چلو تم لوگ بہت ہی عربک والے ہیں، عرب بھی بولنے والے ہیں، اور عربک میں بہت ماہر تھے وہ لوگ، بہت ماہر تھے، تو ایسا کرو، ایسا قرآن بنا کے لے آؤ. چیلنج کیا، قرآن لے آؤ، چلو تم لوگ عربی تو جانتے ہیں. کچھ دن انتظار، نہیں بنا سکے، تو اللہ نے پھر کہا فأتوا بعشر سور، 10 سور، آخری 10 سور، الم ترى سے لے کر سورۃ الناس، اتنے لے آؤ. چلو نہیں لا سکے تو اللہ نے پھر کہا فأتوا بسورۃ، چلو ایک سورت انا آتیناک الکوثر جیسی 3 آیت والی بنا کے لے آؤ. اگر قرآن جھوٹا ہے، تم لوگ تو عربی جانتے ہیں، تو چلو چیلنج ہے تمہارے ساتھ. اللہ نے قرآن میں ان کے ساتھ چیلنج کیا، اور یہ چیلنج قیامت تک باقی ہے. دس چیلنج از گوئنگ ٹو ریمین ٹو برنگ قرآن سملر لائک دس قرآن ٹل دا ڈے آف قیامت. دنیا میں ہے کوئی جو اس زمانے میں یا اس کے بعد صحابہ کے زمانے میں، تابعین، تبع تابعین، آج تک اور قیامت تک عرب لوگ عربی بولتے ہیں مڈل ایسٹ میں، کہاں اور کہاں، کیا کوئی ہے ایسا جو لوگوں نے ڈکشنری لکھ دی، عربک ڈکشنری، اور لکھنے والے بھی غیر مسلم ہیں. یہ عربک ڈکشنری ہے نا، بہت سارے نان مسلم نے لکھی ہے، عربک ٹو انگلش بہت زیادہ ہے، سو مینی. نہیں، بہت سارے نان مسلم قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو इस्लामिक यूनिवर्सिटी में यहूद लोग हैं, बुखारी मुस्लिम को पढ़ाते हुए पकड़े गए, नो वन नोज इट, के पास चलो तुम्हारी अरबी कितनी पावरफुल है, ये चैलेंज है सारी दुनिया को, हर मिल्लत को, चाहे वो जुबिश हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुशरिक हो या कोई मुसलमान भी हो, चलो चैलेंज है कि ऐसी अगर नहीं पूरा कुरान तो 10 सूरा नहीं तो 3 आयत, इन्ना तैना कल कौसर फसल लिले रब्बी का वन्हा इन नशान, बस इतना तुम कुरान जैसा अरबी बना के ले आओ। मैंने पहले बार बार बयान किया लेकिन नहीं ला सके। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो कुरान के बारे में हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे अंदर पैदा हुए मक्का मुकर्रमा में और तुम्हारे अंदर 40 ईयर्स 40 साल रहे, स्टोर इन मक्का 40 ईयर्स 40 साल रहे, न मां न बाप न दादा फ्रॉम द स्मॉल एज कोई नहीं, न उस्ताद कोई नहीं, कहीं मदरसे में नहीं गए और कहीं यूनिवर्सिटी में नहीं गए, यू डिडंट गो नो वे अप टू 40 ईयर्स और 40 साल तक तुम्हारे अंदर रहे, तुमने ये भी कहा कि ये सादिकुल अमीन है, सच्चे है, अमानतदार है, तुम लोग तो अपनी अमानत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखते थे, यूज टू कीप योर अमानत बाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जब हिजरत के लिए जाने लगे तो सबकी अमानत देकर गए हजरत अली रजी अल्लाह तआला, ये सबकी अमानत दे देना भाई 40 साल, और तुम लोग हर काम में इनसे मशवरा लेते थे, हजरे अस्वद को रखने में इनसे मशवरा लिया, बहुत सारे काम थे तुम्हारे अंदर, तो सबसे ज्यादा सच्चे ट्रस्टवर्दी अमानतदार अगर कोई इंसान थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जब 40 साल के हुए तो अचानक सडनली अपनी जबान से फसी और बली कुरान बयान करने लगे, तो फिर तुम्हें समझ जाना चाहिए कि ये कोई इनका घड़ा हुआ कुरान नहीं है। ये लोग क्या कहते हैं, इफ कोनी तरा, कुरान भी कैसा बयान किया, सच्चा अल्लाह भी सच्चा, रसूल भी सच्चे, तुम लोग कह रहे कुरान भी सच्चा, खुद अल्लाह कह रहे हैं वमन अस्दकु मिन अल्लाह हदीसा, वमन अस्दकु मिन अल्लाह कीला, अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात किसकी हो सकती है, तो अल्लाह भी सच्चा, नबी भी सच्चे, कुरान भी सच्चा, कि तुम्हारे सामने चैलेंज कर दिया कि ईरान, मैंने रमजान में भी कहा था ईरान और रोमन की फाइटिंग होगी और ईरानी लोग गोइंग टू बी ओवर पावर, किसके ऊपर, रोमन लोगों के ऊपर, ईसाई पर ओवर पावर हो जाएंगे और उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, खत्म कर देंगे। किसी को यह पता नहीं था कि टाइम आएगा, जमाना आएगा कि यही क्रिश्चियन ओवर पावर हो जाएंगे ईरानियों के ऊपर, और ये बात कुरान ने कुछ साल पहले बयान कर दी। अल्लाह ने कुरान अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम, रोमन गालिब आ गए, ये कुरान ने बयान किया होने से पहले, सच बात बयान कर दी। तो मक्का के मुशरिकीन कहने लगे अबू बकर रज़ी, चलो शर्त लगाते हैं 100 कैमल्स, कितने भाई 100, उस जमाने में शर्त लगाना जायज था, बाद में इसको हरा, एक तरफा शर्त जायज है लेकिन दोनों तरफ जायज नहीं है। ओके, ईरानी लोग गालिबाग ओवर पावर हुए तो तुमको अबू बकर हमें 100 कैमल देना पड़ेगा, और अगर रोमन ओवर पावर हो गए तो हम तुमको 100 कैमल देंगे, ये शर्त थी। और हुआ, बदर की लड़ाई हो रही थी, ये तो हिजरत करके आ गए, और बदर की लड़ाई में दो खुशी थी, एक खुशी तो बदर की जीत की, 313 को कामयाबी मिल गई, और दूसरी खुशी बदर के दिन ही रोमन लोगों ने ईरानियों को खत्म कर दिया, दो खुशी थी, बस टू प्लेजर, खत्म कर दिया। अब जिन लोगों ने शर्त लगाई थी अबू बकर सिद्दीक के साथ, वो सब लोग 70 जो थे बदर में मारे गए, तो उनकी औलाद स्पेशल मक्का से मदीना मुनव्वरा आई और कहा अबू बकर मेरे फादर ने, उन्होंने कहा मेरे फादर ने आपसे शर्त लगाई थी, आप सच्चे हैं, तुम्हारा कुरान सच्चा है, ये 100 कैमल ले लो। स्पेशल आए मक्का से मदीना कैमल देने के लिए, कुरान सच बोलता है, अभी तो लड़ाई नहीं हुई, उससे पहले अल्लाह ने कह दिया अलिफ लाम मीम, अलिफ अल्लाह, लाम रसूलुल्लाह, मीम जी ये लाम जिब्रील, मीम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सच उतारा अल्लाह ने रसूलुल्लाह पर, किसके जरिए से, जिब्रील के जरिए से। गोलीबातिर रोम, कौन गाली बजाएंगे, रोमन एम्पायर, दे गोइंग टू ओवर पावर अपॉन द ईरानियन, वो भी फायर वर्शिप पर थे उस जमाने में, ईरानी लोग आज की तरह ने उस जमाने में फायर वर्शिप पर थे, आग की पूजा, वो मजूसी थे, ये ईसाई थे, लेकिन ये अहले किताब है, वो अहले किताब उनके पास बाइबल थी, उनके पास तो कोई किताब ही नहीं थी। तो अबू बकर सिद्दीक फरमाते बदर के दिन टू खुशियां हुई, एक तो कुरान सच बोला उसकी खुशी, पता चला कि अल्लाह भी सच्ची, कुरान भी सच्ची। अब ये क्या कह रहे हैं, देखो साहब, وقال الذين كفروا, काफिर लोग कहने लगे इन हाजा, ये इन हाजा ये नहीं है, इल्ला इफ्कुन, इफ्कुन के माना है झूठी, मेड अप स्टोरी। इसीलिए हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अनहा की स्टोरी को वाकिए स्टोरी ऑफ इफ कहते हैं, यू कैन दे मेड अप दे लाइज अपॉन हजरत आयशा। तो अल्लाह भी कह रहे इफ्कुन, ये कह रहे ये कुरान को, ये क्या कह रहे हैं, मेड अप स्टोरी है, इफ्तराउ जो उन्होंने अपनी तरफ से बना लिया है, धर लिया है, लिख लिया है। वअनहु अलैहि कौमुन आखरून, वअनहु अलैहि कौमुन आखरून, और क्या कह रहे हैं, दूसरे लोग नबी को रात में मदद करते हैं, स्टोरीज बयान करते हैं, कौमे आद कौन, कौमे समूद कौन, और फिर सुबह अल्लाह के नबी सुबह शाम क्या करते हैं, ही इज एक्सप्लेनिंग हिज सहाबा। तो यहां नबी का भी मजाक, कुरान का भी मजाक, सहाबा का भी मजाक, कि लोगों की बात सुनकर नबी क्या करते हैं, याद कर लेते हैं रिकॉर्ड और लिख लेते हैं और फिर क्या सबके सामने बयान करते हैं। ये बात कही जो अल्लाह खुद कुरान में कह रहे हैं। अब ये कौन है, वो आनहु अलैहि कौमुन आखरी, कौमुन आखरुन कौन है, जिनके बारे में मक्का मुफस्सिरीन फरमाते हैं मालिम तंजील में, इसी तरह काजी सनाउल्ला साहब पानीपति और बहुत सारे इमाम राजी वगैरह कहते हैं, ये तीन आदमियों का नाम लेते थे, हजरत जबर का, जबर जो है ये अब्दुल्ला इब्न हजरमी रजी अल्लाह तआला अन्हु के फ्री आजाद किए हुए गुलाम थे, लेकिन ये अरब नहीं थे, अरबी नहीं थे, ये अजमी थे, और दूसरे यसार है मशहूर नाम उनका, ये भी गुलाम थे, ये भी अरबी नहीं थे, बाहर से आए थे, दे केम फ्रॉम आउट कंट्री लिविंग इन मक्का। और तीसरे अद्दास है, अद्दास है, ये तीनों के बारे में ये क्या कहते हैं, अद्दास की स्कोर स्टोरी मैंने शायद रमजान बयान की होगी, फिर दोबारा दोहरा लूं, अद्दास कौन थे, बहुत अजीब आदमी थे ये अद्दास जो है, कहते हैं मैं और मेरे मां बाप बहुत मालदार थे, वी वर वेरी रिच, हम तो रहते थे कहां, और फिर मुझे गुलाम बना लिया गया, और कहां आ गए हम, ताइब में लाया गया, कौन ले आए, उतबा और शैबा ले आए, जो रबिया के बेटे थे, मेड मी गुलाम सेवन, मैं उन्हीं के लिए काम किया करता था, बहुत बिजी रहता था, क्योंकि ये दोनों जो उतबा एंड शैबा बहुत मालदार थे ताइफ में, उनके अंगूर के बड़े बड़े गार्डन्स थे ताइफ में, आज भी वो उन्हीं की नस्ल पर चले आ रहे, अंगूर के यू नो द ग्रेप्स के गार्डन्स थे, और ये समझते थे कि हमसे बड़ा कोई मालदार नहीं है, उनको गुरूर था, तकबूर था, प्राइड था इन दोनों को। तो अद्दास कह रहे हैं कि मैं उनके लिए काम करता था, मैं जब
शाम का वक्त था और अपने गार्डन में काम कर रहा था। वॉज वर्किंग इन माई गार्डन, इन माई उत्बा शेबाज गार्डन। मैंने सुना लोगों की आवाज को, शोर गोगा हो रहा है, मारो कत्ल करो, मारो कत्ल करो, आवाज सुन रहा था। चूंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे ना ताइफ जब हजरत खदीजतुल कुबरा का इंतकाल हो गया, और इसी तरह हजरत चचा अबू तालिब का इंतकाल, अब्दुल मुत्तलिब पहले इंतकाल कर गए लेकिन चचा अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया। तो हम गए थे कहां, एक गुलाम को लेकर गए थे जैद को, कहां ताइफ गए। चलो यहां मक्का वाले तो हमारी दावत को कबूल नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, तो ताइफ वाले कबूल कर लेंगे। वहां पर गए और वहां तीन बड़े बड़े सरदार थे, एक का नाम अब्द यालेल था, अब्द यालेल, दूसरे का नाम मसूद था, तीसरे का नाम हबीब था। ये तीन सरदार थे, थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं। ये तीन सरदार थे, अब्द यालेल के पास जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीनों थे, एक ने बताया कि अगर तू सच्चा रसूल है तो मैं काबा के सामने जाकर अपनी दाढ़ी को मुंडा सकता हूं। यूं कहा, मतलब तू सच्चा रसूल नहीं है, अगर तू सच्चा है तो मैं अपनी दाढ़ी में मुंडा दूंगा। उस जमाने में भी लोग दाढ़ी रखते, मुंडा दूंगा। और दूसरे ने कहा, दूसरे मसूद ने कहा, उसने कहा कि खुदा को तेरे सिवा कोई मिला ही नहीं। उस जमाने में समझते थे कि जो मालदार हो, हाकिम हो, सरदार हो, प्रॉपर्टीज वाला हो, बड़े बड़े बंगलेज हो, वही नबी बन सकता है। थिंकिंग लाइक दिस, तो को कहने लगा इतने बड़े बड़े मालदार हैं हम जैसे ताइफ में, मक्का में, अबू जहल वगैरह, उन सब पर तो वही नहीं आई, तुझ पर ही आ गई, तुम्हें नबी बना दिया गया। ये कहा। तीसरे ने कहा, हबीब ने, अगर तुम सच्चे हो तो फिर तुम्हारे साथ बात करने में मुझ पर अजाब आ जाएगा, यानी तुमको झुटलाने में अजाब, और अगर तुम झूठे हो नाउज़ुबिल्लाह तो फिर मेरी शान के खिलाफ है कि आपसे बात करूं, मैं सरदार हूं, हाउ कैन आई टॉक टू अ लाइ पर्सन, मेरी शान के खिलाफ। और फिर तीनों आ गए, आवाज लगाई नौजवान बच्चों को, हबशी बच्चों को आवाज लगाई, आओ आओ आओ, चलो इनको मारो, भगाओ, मारते मारते मारते। और वो मारते जाते थे, गालियां देते थे और बुरा भला कहते थे, कहीं इधर से कहीं उधर से, मारते मारते मारते। मैं बैठे बैठे देख रहा हूं ये शोर किस चीज का है, बाहर निकला दरवाजे के तो देखा कि कोई एक आदमी है जिनके बारे में मेरा बाप कहा करता था नैनवा में, यूनुस अलैहि सलाम जहां थे ना उस जगह से थी, अद्दास, कि इस तरीके से मूसा अलैहि सलाम होंगे, फिर ईसा अलैहि सलाम होंगे, फिर आखिरी नबी आएंगे, कहीं यही तो नहीं है जो अपने गुलाम के साथ आएंगे। मैं देखता रहा लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए मैं तो गुलाम था उतबा और शैबा का, तो मैं देखता रहा। वो मार खाते, गिरते, पड़ते, उड़ते हमारे बाप के पास आ गए, दीवार के साथ टेक लगाकर खड़े रहे, फिर वहीं पर बैठ गए, क्योंकि चलने की ताकत नहीं थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बिल्कुल ताकत नहीं थी, खून खून सर से सब जगह से खून निकल रहा था, खून वॉज ब्लीडिंग फ्रॉम होल बॉडी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बैठ गए और मैं वो खजूर के बेल के पीछे से देख रहा हूं क्या हो रहा है, मैं जा नहीं सकता इसलिए मुझे इजाजत नहीं थी, गार्डन से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन मैं छुप कर देखता रहा। तो वो गुलाम जो था जैद, उन्होंने आपके जूते निकाले, वो बिल्कुल खून से भर गए थे, चिपक गए से, जैसे ग्लू कैसा होता, ऐसे खून से चिपक गए थे पूरा, उन्होंने साफ किया खून वगैरह, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाया, और मैं सुन रहा हूँ अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं, वो दुआ मशहूर है ताइफ की दुआ, शुरू में सुनता रहा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए बद्दुआ नहीं की, मैं बद्दुआ नहीं की। और उतबा और शेबा हमारे मास्टर थे, वो देख रहे थे इस मंजर को, और उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो मेहमान है, बाहर से आए, मक्का से आए, मारना नहीं चाहिए था, अगर कबूल नहीं करना था तो उनको भेज देते, लेकिन मारना मरवाना नहीं चाहिए था बच्चों के पास, यंगस्टर्स के पास उनको मरवाना नहीं चाहिए था, इतना मारा खून निकल, गोया काफिर को भी रहम आ गया, इतना मारा था। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा जब उन्होंने सवाल किया कि ओहद में तो आपको खून निकला, आप गिर गए, आपके दांत शहीद हो गए ओहद मैदान में, क्या उससे भी ज्यादा कोई तकलीफ? फरमाया ताइफ में जो मुझे तकलीफ हुई है वो कहीं नहीं हुई, बहुत खतरनाक मुझे मारा गया था ताइफ के मैदान में। उत्बा और शेबा ने कहा इधर आओ, या दास ये खजूर लो प्लेट में रखो उनको खिलाओ, पानी और खजूर लेकर आ गया, अपने ये ग्रेप्स लेकर आ गया, अंगूर लेकर, अंगूर लो जाओ उनको खिलाओ, अपने गार्डन की अंगूर दिए, बस सो। खाने से पहले क्या पढ़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खाया। तो वो अद्दास सुन रहा कि ये तो इस पूरे इलाके में कोई बिस्मिल्ला बोलता ही नहीं है, ये तो हमारे इलाके में बोलते हैं जहां यूनुस अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह फरमाया अल्लाह ने दिया है तो उसका नाम पहले लेना चाहिए, अल्लाह ने खाना दिया है तो पहले बिस्मिल्ला पढ़ना चाहिए। अब्दास कहते हैं मेरे तो पैर के नीचे से जमीन निकल गई, सुभान अल्लाह, ये वही नबी है, ये वही नबी है, वही नबी है। और वही चूमने लगे, स्टार्ट किसिंग ऑन हिज फोरहेड हैंड फीट, स्टार्ट क्लीनिंग। और उत्बा और शेबा देख रहे दूर से। जब ये वापस गए अब्दास, गुलाम कहा तू बदनसीब है, तेरा दिन सबसे अच्छा है तो इनको मानता है, ये क्या मोहब्बत लगी हुई तुझे कि किस करने लग गया? फरमाइए आखिरी नबी है जो मेरा बाप सुना रहा था वही नबी है ये, इसलिए कि मैंने पूछा है उनको कि तुम कहां, उन्होंने मुझे पूछा कि तुम कहां से हो, तो मैंने कहा मैं नैनवा से हूं, मोसल नैनवा से हूं, सीरिया में जगह। तो कहा वहां तो हमारे भाई रहते थे, यूनुस अलैहिस्सलाम के शहर से हो? अल्लाह के नबी ने यूं कहा यू फ्रॉम प्लेस ऑफ यूनुस अलैहिस्सलाम, तुम शौक हो गए? फरमाया वो तुम्हारे कौन लगते हैं? फरमाया वो भी नबी मैं भी नबी, हम दोनों नबी भाई भाई है। शौक हो गया, सच्चा नबी, दलाइल मिल गए, वही कलमा पढ़ लिया उसने और अपने कलमे को छुपाया। लेकिन उतबा और शेबा ये छुप कर फिर भाग गए। जब बदर की लड़ाई हुई उस वक्त एक टीले पर बैठे हुए थे बदर में, और वहां से जो मक्का मुकरमा से जितने काफिर आ रहे थे उसमें उतबा और शेबा भी था, उनका मास्टर भी थे। तो कहा उतबा और शेबा सुन, लड़ाई न कर, ये सच्चा नबी है, लड़ाई न कर। तो उन दोनों ने कहा तेरे यहां सच्चा नबी होगा, हमारे यहां नहीं है। कहा तेरी हालत बहुत खराब होगी। फिर नहीं माना दोनों ने, वो 70 आदमी कत्ल कर दिए गए काफी, उसमें से ये दोनों भी थे उतबा और शेबा, और इनकी बॉडी को डाल दिया, कहां डाला? कुएं में। और अल्लाह के नबी ने बात की इन लोगों से कत्ल करने के बाद, कुएं में बात की। हजरत उमर कहते हैं कि वो सुनते हैं, वो तो मर गए, फरमाया तुमसे ज्यादा सुनते हैं। मिल गया तुमको जो अल्लाह ने कहा था, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, कलमा पढ़ो नहीं पढ़ा, ये बात, ये अद्दास है। अद्दास भी थोड़ी कुछ अपनी पिछली किताबों की स्टोरी जानते थे, लेकिन अरबी नहीं थे, और उधर से जबर भी, मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूं कि ताकि बात समझ में आ जाए, ये जानते थे कुछ थोड़ी कुछ बातें, लेकिन अरबी। तो कुरान तो कह रहा है वलकद नालम, कुरान की एक आयत मैंने लिखी है यहां पर, वो वलकद नालम, क्या आयत है? वलकद नालम, कि हम जानते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये न पढ़ना जानते हैं और न तो लिखना जानते हैं। वमा कुंत तत्लु मिन किताबिही मिन किताब, न लिखना जानते हैं न पढ़ना जानते हैं, तो फिर वो कैसे ऐसी फंसे लिसान में कुरान बयान कर सकते हैं? और ये लोग भी अरबिक नहीं जानते हैं। वलकद नालमू में उसका जिक्र है इन लोगों का, कि ये लोग जिनका तुम जिक्र कर रहे हो ना जबर यसार का, ये तो अरब है ही नहीं, तुम अरब वाले नहीं ला सकते कुरान को, तो वो कैसे बयान कर सकते। अगर उन्होंने स्टोरी बयान की है तो नबी तो ऐसी फंसी जबान बोल नहीं सकते थे। अल्लाह तबारक व तआला उनको कह रहे हैं कि ये, इसीलिए इस आयत में दो बातें हैं। बाद मुफस्सिरीन कहते हैं वकाल الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه وعانوا عليه قوم اخرون تک، ये उन काफिरों की बात है। और बीच में فقد جاءوا ظلما وزورا अल्लाह की बात है, और आगे फिर काफिरों की बात है। वे यूं कहो ये तो बनाया हुआ कुरान है, दूसरों ने उनकी मदद की है, और ये अगलों की कहानियां हैं जो ये सुबह शाम साहबा के सामने बयान करते हैं। उसके बीच में जो जुमला है फकद जाऊ जुल्म वजूरा, अल्लाह कह रहे हैं ये जुल्म कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, किस पर? मुझ पर भी, और मेरे रसूल पर भी, और मेरे कुरान के ऊपर भी। और बाद मुफस्सिरीन कहते हैं ये पूरा जुमला उन्हीं काफिरों का है, और वो यू कह रहे हैं सुबह शाम ये क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, यानी लोगों से सीख रहे हैं, और सीखने के बाद फिर हमारे सामने बयान करते हैं। वही ये तुम ला अलैहि बुकरतम सी, हालांकि अल्लाह कह रहे हैं वकुंत तत्लू मिन कबली मिन किताब, आप उससे पहले किताब पढ़ना नहीं जानते थे। वला तखुतुहु बियमीनिक इदल लरताबल मुबतिलून, ना लिखना जानते थे। अल्लाह के नबी वाकिया बहुत सारे हैं, 9 हिजरी तक में आप कह रहे हैं अली मेरा नाम किधर लिखा हुआ है। ओ अज़ाब में जब तशरीफ ले गए आप क्या कह रहे हैं मक्का मुकर्रमा उमरा के लिए, उन्होंने जाने नहीं दिया, तो ट्रीटी हुई ना तो उसमें शर्त लिखे थे, तो उसमें कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो उन्होंने कहा हम रसूलों का मानते ही नहीं है ना, तो फिर लिखते क्यों है आप, इसको मिटाओ। तो हजरत अली को कहा वो मिटा दो, कहा नहीं 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 हम सच्चे हैं, रसूल सच्चे हैं, हम नहीं मिटाएंगे। ने कहा तो कहा मुझे बताओ किधर रसूलुल्लाह लिखा है, आपको तो इतना भी नहीं पता था कि रसूलुल्लाह कहां लिखा है, कैसा लिखा हुआ है, तो फिर वो कैसे कुरान को बयान करेंगे। जब इतनी बात ऐसे तो कुरान खुद कहता है, आज भी लोग यही कहते हैं कि इन्होंने इस तरीके से शैतान की मदद से नाउज बिल्ला फुना और फुना फुना के जरिए से कुरान को बनाया, आज भी कहते हैं। तो ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ नहीं बोल सकते, बोला नहीं। अब्दुल्ला इब्ने सलाम फरमाते हैं मैं तो तौरात का आलिम, बाइबल का आलिम, और मैं गुलाम था, और जब अल्लाह के नबी हिजरत करके आए तो मैं और लोग देखने के लिए गए तो मैंने भी देखा, मैंने फौरन कहा लैसा हाज़ा बिवजहिल कज़्ज़ाब, ये झूठा चेहरा नहीं हो सकता है, ये कैनॉट बी अ लायर फेस। और फिर क्या कहा, हम लोग जब पास में गए ना तो हिजरत के बाद सबसे पहला कलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान पर था, कौन सी बात थी, अब्शुस्सलाम अत्इमुत्तआम वसीलुल अरहाम वसल्लु बिललैल वन्नास नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम, कितनी अच्छी बातें बयान की, सलाम करते रहो दूसरे को, दूसरे को सलाम 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 अलैकुम सलाम अलैकुम, खाना खिलाओ फीड ईच अदर, और रिश्तेदारी बाकी रखो, और तहज्जुद में उठो सल्लु बिललैल वन्नास नियाम, जब लोग सोए हुए हो ये चार कर लो, ये चार काम, चार काम, सलाम कर लो, खाना खिलाओ, नंबर 3 जो है क्या कहा फरमाया कि आप रिश्तेदारी बाकी रखो, और नंबर 4 क्या कहा आप रात को उठ के तहज्जुद पढ़ो, जब लोग सोए हुए हो तदखुलुल जन्नत बिसलाम, तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। वो नबी कैसे झूठ बोल सकते हैं बताओ, कैसे झूठ बोल सकते हैं। इसलिए आगे एक और आयत है उसको पहले पढ़ लेते हैं, कुल अनज़रहु अल्लज़ी यअलमु सिर्रा फिस समावाति वल अर्द इन्नहु कान गफूरर रहीमा, ए मेरे नबी इनको बतला दीजिए उतारा है इस कुरान को उस अल्लाह ने जो ओपन एंड हिडन खुली और छुपी बात को जानता है, कोई बात नहीं जानता। अरे भाई देखो ना कुरान में सूरतुन नमल, नमल का क्या माना है? चोटी, एंट। इसका नाम ही सूरत नमल रख दिया। क्यों? इसलिए कि उस सूरत में अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक्य बयान किए। वो क्या है? चूटी कह रही है अपनी सारी चूटियों से, चूटी कह रही है सारी चूटियों से, या अय्युन नमलु, ए चूटियो, उदखुलु फी मसाकिनकुम, अपने अपने बिल में दाखिल हो जाओ। क्यों? सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है ना, तो वो क्या करेगा तुम सबको, पर चल जाएगा, तुम मर जाओगे, छोटी छोटी सब मर जाओगे। एक चूटी सारी चूटी को कह रही है। अल्लाह ने ये बात सुलेमान अलैहिस्सलाम को सुनवाई, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुनी कि चूटी ने सारी चूटियों को यूं कहा। जो अल्लाह नबी को सुनवा सकता है वो अल्लाह नहीं सुनता, वो छुपी बात को भी जानता है, खुली बात को भी जानता है। वो पहाड़ काला पहाड़, काले पहाड़ में काली चूटी, काली रात में चूटी चलती है, उसकी चलने की आवाज को भी और चलने की लकीर को भी अल्लाह जानता है। ये अल्लाह है कुल अन, उस अल्लाह ने इसको उतारा है, इसलिए कि अल्लाह ने इस मशीन को बनाया है। ये मशीन है ना, आप लोग कहीं से वॉशिंग मशीन खरीदो या कहीं से कोई भी मशीन खरीदो, उसके साथ एक छोटी बुकलेट होती है कि नहीं? कोई छोटी चीज उसके साथ भी बुकलेट होती है, हाउ टू ऑपरेट, हाउ टू यूज, है ना, होती है कि नहीं? अल्लाह ने इतना बड़ा मशीन बनाया तो कोई बुकलेट तो होनी चाहिए ना, कि कैसे जिंदगी गुजारना है, कि कैसे तुम्हें मशीन को चलाना है? है तो इंसान को बनाया, तो इंसान की ऑपरेट के लिए अल्लाह पाक ने कुरान करीम को उतारा कि जिंदगी कैसे गुजारनी है, हलाल क्या, हराम क्या है, जायज किया, नाजायज किया है, नमाज किया है, रोजे किया है, जकात किया, जन्नत किया, जहन्नम किया, ये किया, ये किया, सारी चीजें अल्लाह पाक ने इस कुरान में बयान की है। अल्लाह कह रहे हैं अंजलहु बिइल्मी, बिइल्मी, मैंने अपने इल्म से उतारी है कि कौन सी चीज इंसान को जरूरत है। क्यों? तंजील मिन रब्बिल आलमीन, आलमीन, उस रब की तरफ से जो सारी दुनिया का रब है, उसने इस कुरान को उतारा है। आई बात समझ के अंदर में? ये है जो अल्लाह पाक बयान कर रहे हैं यहां पर। अल्लाहु अकबर। कुल अंजलहु अल्लज़ी यालमु सिर्र बिस्समावाति वल अर्द, ये कुरान कलामुल्लाह है, अल्लाह से निकली हुई बात है। अल्लाह कुरान करीम में कहते हैं तुम्हारा ऑपरेट मैं करता हूं कुरान के जरिए, और कुरान भी साथ में कभी कभी वो फिक्स करने वाले भी आते हैं ना, वो बतलाते हैं ना कि बुक में क्या लिखा है, कैसे इस्तेमाल करना है, है ना, मुझे जरूरत पड़ी ना वो चीज डालने की, भाई ये बॉयलर डाल दो, वो आदमी हमें तो समझ में नहीं आया, उसने कहा ठीक है बुकलेट ला, डाल दिया उसने बुकलेट ला, अब कैसे इसको ऑपरेट करना उसने मुझे बताया। अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त बात समझ में आती है कि अल्लाह ने इंसान को बनाया, वो कह रहा है खुद अल्लाह तबारक व तआला कह रहे नज़ल अल किताब, किताब को उतारा, वह यतवल्लस सालिहीन, अब ये लोगों की तरबियत करेगा, किसके जरिए, नबी के जरिए से। इस नबी को क्या हुक्म दिया, वह युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत वल हकीम, जाओ दुनिया में जो किताब मैंने उतारी तुम पर, लोगों को ऑपरेट करो, कैसे तुम्हारी जिंदगी गुजारनी है, कैसे जिंदगी गुजारनी है, तो नबियों ने आकर हमें बताया। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बात बताई, और अल्लाह क्या कह रहे हैं इन्नहु कान गफारा गफूरर रहीमा, अल्लाह मगफिरत करने वाला, रहम करने वाला। अल्लाह क्या कहना चाहते हैं इसमें, बात तो चल रही झूठ की उनकी, वो कुरान को झूठा कह रहे हैं, नबी को झूठा कह रहे हैं, अल्लाह को झूठा कह रहे हैं, शिर्क कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है इन्नहु कान गफूर रहीमा, चलो हो गया हो गया, आओ आओ माफ कर दूंगा, अल्लाह क्या कह रहा है माफ कर दूंगा। इसलिए कि तुम इंसान गुस्से से मुतासिर हो जाते हैं, यानी तुम गुस्से होते हैं तो फिर किसी को ढुटकार देते हो या मना कर देते हो, या तुम खुश होते हो किसी को इनाम देते हो। अल्लाह कहते हैं मुझे न गुस्से का असर होता है और न तो खुशी का असर होता है, अगर मैं भी ऐसा करूंगा तो मेरे और तुम्हारे दरमियान में क्या फर्क हुआ? बोले तुमने तो रोजाना गुनाह किया है, रोजाना मेरी नाफरमानी, तुमको कभी खाना ना देता मैं। अगर मैं भी तुम्हारी तरह जैसे बेटा बाप के खिलाफ करे तो बाप उसको निकाल देता है उसके गुस्से की वजह से। अगर अल्लाह भी ऐसा करता, शैतान को पता था कि अल्लाह पर गुस्से का असर नहीं और अल्लाह पर खुशी का असर नहीं, यानी वो मुतासिर इफेक्ट नहीं करता है। इसलिए तो अल्लाह गुस्से में बखरुत 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 निकाल यहां से जन्नत से, फिर भी दुआ कर अल्लाह मुझे लंबी उम्र दे दे। देखो गुस्से में निकाला जा रहा है और क्या कह रहा है, लंबी उम्र दे मुझे कयामत तक की, इला यौम युबअसून। नहीं बात उस शतर को पता है। तो अगर अल्लाह इसने आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को नबी सादर फरमाया अल्लाह इतना गफूर रहीम है, वो कहते ताब अल्लाह अलैह लकद ताब ताब अल्लाह अलैह, तुम तोबा कर लो अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। चलो तुमने कुरान को झुटलाया, चलो तुमने मेरे नबी को झुटलाया। ये जितने सहाबे किराम थे ना वो कहां मुसलमान थे पहले, ये सब के सब कितने झुटलाने वाले थे सब के सब। लेकिन अल्लाह पाक ने वलो अन्न कुरान सुयरत बिहिल जिबाल, अगर ये कुरान पहाड़ पर उतारा जाए, सुयरत बिहिल जिबाल, पहाड़ भी टुकड़े टुकड़े, जैसे लवन जल्ला हाजल कुरान मुर्दों के सामने पड़ा जाए, मुर्दे भी जिंदा हो जाए। कारी सा फरमाते हैं ये ऐसे थे जाहिल लोग उस जमाने में, जमाने जाहिलियत में, कि जो पहाड़ से भी ज्यादा स्ट्रांग थे, पहाड़ तो कुछ भी नहीं, मुर्दा दिल थे, मुर्दा तो कुछ भी नहीं बात। ऐसा कुरान ने और नबी की बात ने ऐसा असर किया उनके दिलों पर कि वो सब के सब जान कुर्बान करने लगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह कह रहे चलो यार जो हो गया हो गया, इन्नहु कान गफूरन रहीमा, अल्लाह मगफिरत करने वाला है, जब माफ कर दे। कुरान करीम में हर जगह पर पहले गफूर फिर रहीम, पहले गफूर वगफिर लना वरहमना, वगफिर लना वरहमना, हर जगह पर देखो। क्यों पता है तुम्हें? इसमें हमारे शेख हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह इसको बयान फरमाते हैं, वो अजीब बात बयान की है। फरमाया बाप जब नाराज होता है अपने बेटे से तो पहले बेटे को चाहिए अपने बाप को राजी करें, जो बाप ने देना था वो बंद कर दिया ना, स्टॉप, हम लोगों ने गिव नथिंग, आई एम वेरी एंग्री ऑन यू, तो बाप इज एंग्री, ही डोंट वांट टू गिव नथिंग, सो पहले क्या कर ले, माफी मांग ले अल्लाह से, बाप से माफी मांग ले, फिर बाप क्या करेगा, रहम कर, चल ले ले जा। अल्लाह से पहले माफी मांग लो, तुम्हारी इस करतूत की वजह से मैंने तुम पर जो नेमतें बंद कर दी है, वो रहीम क्या कर देगा, रहमत का दरवाजा खोल देगा। ये है गफूर रहीम का माना। इन लोगों के साथ अल्लाह कह रहे हैं चलो हो गया मैं माफ करने वाला हूं तुम्हें, माफ तोबा कर लो। हम तो मुसलमान हैं, हम तो अल्लाह को मानते हैं, हम तो कुरान को मानते, वो तो कुरान को भी नहीं मानते थे, तो अल्लाह तो हमारे साथ कितना मगफिरत करने वाला रहम करने वाला है। दो रकात पढ़ के अल्लाह से माफी मांग ले, अल्लाह माफ कर देगा। ठीक है, बस यहीं पर बाकी रखे चार पांच छह तीन। अब आगे दूसरा एक सवाल है, ये लोग कहते हैं नबी तो खाते पीते हैं, बहुत अच्छी बात है, उसको इंशाल्लाह बयान करेंगे। या रहमान रहीम या दिल जलाल वल इकराम या अकरम अल अकरमीन अल्लाह रहम का करम का अफ़व का आफियत का मामला फरमा। अल्लाह तेरे कुरान से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा, अल्लाह तेरे कुरान से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा। ये जितने लोग बैठे हैं तेरे कुरान की मोहब्बत में और मिक्सर के जरिए मस्जिद के जरिए लोग सुन रहे हैं दरस कुरान को जहाँ कहीं नेशनल और इंटरनेशनल, ए अल्लाह सब को इलाहुल आलमीन तेरे कुरान की मोहब्बत नसीब फरमा, सब के दिलों में तेरे कुरान की मोहब्बत पैदा फरमा, तेरे नबी की मोहब्बत पैदा फरमा, और सब के घरों में सब की जिंदगियों में इलाहुल आलमीन उलूम नाफिया नसीब फरमा, कुरान का इलम नसीब फरमा, हदीस का इलम नसीब फरमा, उनकी औलादों को इलाहुल आलमीन हम सब की औलादों को उलमाए रब्बानीन में से बना, अल्लाह हाफिज़े कुरान बना, आशिक़े कुरान बना, दाई कुरान बना। अल्लाह तू बड़ा खुश होता है जब तेरी किताब को समझाया जाता है, अल्लाह तू बहुत खुश होता है जब तेरी किताब को पढ़ा जाता है। अल्लाह इसी वजह से तेरे तू ने अपने नबियों को भेजा था कि लोगों को कुरान पढ़ के समझाओ। अल्लाह ये तेरे बंदे ए अल्लाह तेरे कुरान को समझने की नीयत से बैठे हैं, ए अल्लाह सबकी जिंदगियों में आफियत सेहत सुकून नसीब फरमा, सबकी मगफिरत फरमा। या अल्लाह हम सबको अपने नेक बंदों में शामिल फरमा, अपने औलिया में शामिल फरमा, ए अल्लाह अपने अबरार बंदों में शामिल फरमा, परेशानियों को दूर फरमा, दुख दर्दों को दूर फरमा, बीमारियों को दूर फरमा, आफियत सेहत सुकून नसीब फरमा, हमारी औलादों को आँखों की ठंडक बना। या अल्लाह या रहमान या रहीम या कयूम, जो बीमार में शिफा अता फरमा, जो परेशान हाल अलम की परेशानियों को दूर फरमा। या अकरमुल अकरमीन, या अल्लाह कुरान पढ़ने के बाद तेरा नबी जितनी दुआएं किया करता था, अल्लाह उसमें हमारा हिस्सा नसीब फरमा, वो सारी बातें हमें नसीब फरमा, वो सारी चीज़ें हमें नसीब फरमा, और जिस चीज़ से पना मांगा करता था अल्लाह उन तमाम से हमारी हिफाजत फरमा।